مسلم شاشک شاید اکبر ایک بار یاترا کر رہا تھا اور اس یاترا میں دوپہر کا سمے تھا، نماز کا سمے ہو گیا تھا، تو اس نے اپنی چٹائی بچھائی اور نماز کرنا آرمبھ کیا۔ اتنے میں ایک یوا استری بھاگتی ہوئی وہاں سے گزرنے لگی۔ وہ اتنا تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ اسے پتا ہی نہیں کہ کوئی سمراٹ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی چٹائی سے اوپر سے بھاگتے ہوئے اس سمراٹ کو دھکا دیتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ نماز کرتا ہوا یہ بادشاہ ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی اور کروھ سے بھر گیا۔ کون ہے وہ؟ کیا اسے پتا نہیں میں کون ہوں؟ دیکھتا ہے کہ ایک استری ہے جو جا رہی ہے، اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے نماز پوری کروں گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا اسے کیا دنڈ دیا جائے۔ پھر سے بیٹھ جاتا ہے، نماز پوری ہوتی ہے، دیکھتا ہے وہی استری واپس آ رہی ہے۔ اب دھیرے دھیرے اس کو پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں بھاگ رہی تھی؟ کیا تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں؟ کیوں تم مجھے دھکا دے کر گئی؟ وہ کہتی ہے مجھے تو پتا ہی نہیں میں کب یہاں سے گئی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ یہاں تھے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو میں نے دھکا دبایا۔ مجھے تو جیسے ہی خبر ملی، بہت دنوں سے میرا پریمی جس سے میں پریم کرتی ہوں وہ آ جا رہا ہے، تو میں تو باوری سی اس کے پیار میں اس سے ملنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ وہ بادشاہ پوچھتا ہے پر کیا تمہیں پتا نہیں میں یہاں بیٹھ کر نماز کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا؟ وہ پوچھتی ہے نماز میں آپ کس کو یاد کر رہے تھے؟ وہ کہتا ہے اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ میرا اس سے پیار ہے۔ تو وہ کہتی ہے پیار تو میرا بھی میرے اس معشوق سے ہے، میں اس معشوق کے پیچھے جب بھاگ رہی تھی تو مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ کون بیچ میں ہے اور کون کہاں ہے، اور تم اس کو یاد کر رہے تھے اور میرا ایک دھکا لگا اور تمہاری یاد ٹوٹ گئی۔ یہ کیسی نماز ہے تمہاری؟ آج صبح کی اویکت وانی، آج کا وردان، جیسے نس نس میں بلڈ ہے، جیسے دھمنیوں میں رکت پرواہت ہو رہا ہے، वैसे ही निष्फल हर पल क्या हो बाप की याद। दो प्रकार के बच्चे सुनाए वरदान में, एक तो वो जो दिमाग से केवल ज्ञान के आधार के अनुभव से याद करते, याद करने का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, और दूसरे कौन से, दिल के संबंध से याद करते हैं। जो दिल से याद करते हैं, संबंध से याद करते हैं, उनकी याद कैसी होती है, सहज पल जैसे नसों में रक्त बह रहा है, स्नेह से बाप के प्यार के स्नेह संपन्न याद। तो आज हम नस नस में याद इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या हम करें कि जिससे याद कैसी हो निरंतर, क्या हम करें जिससे याद कैसी हो अव्यभिचारी, क्या हम करें जिससे याद कैसी हो एक रस, क्या हम करें जैसे दो तीन दिन पहले मुरली में आया था, जिन के मौफिक याद। क्या ऐसा याद किया जा सकता है? अब साकार मुरलियों के वाक्य है, जैसे वो स्त्री जब उसे पता चलता है उसका बिछड़ा हुआ पति आ रहा है, गलियों से भागती है भावरी सी, तुम्हें भी बाप से मिलने ऐसे आना चाहिए, कैसे, भागते हुए। यू शैल हियर माई वॉइस एंड नो दैट इट इज मी। बाइबल में वाक्य है, यू शैल हियर माई वॉइस, तुम मेरी आवाज सुनोगे और जानोगे ये मैं हूं। माई शिप्स शैल हियर माई वॉइस, आई एम अ गुड शेफर्ड, मैं एक ऐसा चरवाहा हूं कि मेरी जो भेड़ होगी वो मेरी आवाज सुनेगी, जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वो आ जाएंगे। मैं जब बुलाऊंगा रोक नहीं पाएंगी वो अपने आप को। कम ई ऑल, ई ऑल दैट लेबर एंड आई शैल गिव दी रेस्ट, आ जाओ वो सब मेरे पास, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब उसकी आवाज आए, द डिवाइन कॉल, जब तक यह डिवाइन कॉल, ईश्वरीय कॉल आत्मा को सुनाई नहीं देता, वो उसकी ओर आ भी नहीं सकती। आवाज आनी चाहिए, उसकी आवाज, उसकी पुकार। तब आत्मा दौड़ने लगती है, तब आत्मा मूर्छा से जागती है, तब आत्मा पुरुषार्थ करने लगती है। तब तक सोई सोई रहती है, जब आवाज आ जाए, द कॉल डिवाइन। विदेश के एक संत सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, जब वो संत नहीं थे, एक साधारण युवक, साधारण सी दिनचर्या, भोग और विलास में डूबा हुआ युवक, जब पता चलता है एक बार किसी देश ने आक्रमण कर दिया है, सेना में वो भर्ती हो जाता है और अपने देश की रक्षा के लिए सेना के साथ जा रहा है, और जाते जाते उसके घोड़े को प्यास लगती है, सेना आगे बढ़ती है, वो प्यास बुझाने के लिए, मिटाने के लिए अपने घोड़े की उस तालाब के पास आता है, और जैसे ही अपने घोड़े को पानी पिला रहा होता है, अचानक से आवाज आती है, फ्रांसिस, फ्रांसिस। उसको लगता है कौन मुझे पुकार रहा है, गो एंड रिपेयर माय हाउस। आवाज आती है, जाओ और मेरा घर दुरुस्त करो। वो देखता है कौन है, कौन है, कोई दिखाई नहीं देता है, फिर आगे जाता है। फिर से आवाज आती है, फ्रांसिस, फ्रांसिस, कम, गो बैक एंड रिपेयर माय हाउस विच इज इन शैम्बल्स। वो जो मेरा घर जर्जरी भूत हो गया है, उस जर्जर हुए घर को फिर से उसकी मरम्मत करो। अब वो अपने आप को रोक नहीं सकता और वहां से पीछे मुड़ता है और घर वापस आ जाता है। उसकी माँ और उसका बाप उसको बहुत डांटता है कि ये कैसी कायरता है, तुम देश के लिए लड़ने मिटने गए थे और वापस कायरों की तरह भाग के आ गए। राजा जब सुनता है तो फ्रांसिस को कारावास में डाल देता है, और उस कारावास में कितना समय वो रहता है, और वहां फिर वो आध्यात्मिक रूपांतरण होता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और जब बाहर निकलता है तो ढूंढता है किस घर की वो बात कर रहा था, और चलते चलते एक चर्च के पास पहुंचता है जो कि जर्जर हो चुका है, और उसको स्ट्राइक होता है कि शायद यही वो घर है, और उस घर की मरम्मत वो चालू करता है। वो जो घर था, वो जो चर्च था, जहां पर कोई लोग अब ना आते थे, गांव गांव में जाता है, पत्थर इकट्ठा करता है और उस चर्च का निर्माण करता है। धीरे धीरे उसके साथी आते हैं, सन्यासियों का एक नया संघ, द फ्रांसिसियन ऑर्डर ऑफ मंक्स। दो प्रतिज्ञाएं, एक पवित्रता, ब्रह्मचर्य, और दूसरी गरीबी, सेलिबसी एंड पॉवर्टी, से स्वयं को बांधते हैं, और प्रभु प्रेमियों का एक संघ की शुरुआत। क्या था ये? द डिवाइन कॉल। क्या मुझे ऐसा कॉल आया है? क्या मैंने ऐसा कॉल सुना है? कम ऑन, क्लैप्स माय हैंड एंड कम। आ जाओ, पकड़ो मेरा हाथ और चलो। नस नस में याद हो, रग रग में समाई हुई याद, निरंतर याद, जिन की तरह याद, एक रस याद, अव्यभिचारी याद, एक की याद और दूसरी किसी की नहीं। इस अवस्था को कैसे पाए? क्या हम करें जिससे ईश्वरीय याद निरंतर रहे? याद के ऐसे सात आधार, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। निरंतर याद के, निष्दिन याद के, निष्पल याद के, सतत याद के, प्रतिपल याद के सात आधार। जब तक ये सातों आधार नहीं, याद टूटती रहेगी, याद व्याभिचारी होगी, याद में बुद्धि नहीं टिकेगी और व्यक्तियों में याद भटकेगी। पहला आधार ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं और जब तक ज्ञान की गहराई नहीं, तब तक याद भी गहरी नहीं हो सकती। जितना गहरा ज्ञान, उतनी गहरी याद। जितनी ज्ञान पर पकड़, उतनी याद पर पकड़। लोग प्रश्न पूछते हैं, योग कैसे लगाए, योग कैसे करे, क्या अनुभव हो, जब तक ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन नहीं, मनन नहीं, अध्ययन नहीं, तब तक ज्ञात भी सहज, सतत, निरंतर, सुलभ नहीं हो सकती। ज्ञान को बढ़ाओ। क्या करना है? ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान ज्ञान सूचना नहीं है। दो चीजें हैं, एक है ज्ञान, एक है सूचनाएं। सूचनाएं प्राप्त हुई है, मैं आत्मा हूं, परम धाम के निवासी हूं, परमात्मा ज्योति बिंदु है, सतयुग आने वाला है, ये सृष्टि चक्र 5000 साल का है, ये कलयुग का अंत है, ये संगम युग है, बाप आया हुआ है, ब्रह्मा तन में अवतरण हुआ है, आबू सर्व महान तीर्थ है, दिव्य गुण तुम्हें धारण करना है, वो शूद्र जीवन था, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। सूचनाएं ज्ञान नहीं। नॉलेज इज नॉट इन्फॉर्मेशन। अपनी सूचनाओं को ज्ञान समझने का भ्रम। ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात विवेक, ज्ञान अर्थात विजडम, ज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ज्ञान अर्थात जिसकी धारणा हो गई है, ज्ञान अर्थात जिसको समझा है, माना है, जाना है, स्वीकार किया है और जो रग रग में बह रहा है वह ज्ञान। ज्ञान अर्थात यह समझ कि अब तक कुछ भी नहीं समझा है। ज्ञान अर्थात यह जान लेना कि कुछ भी जाना नहीं है। टू नो दैट आई नो नॉट, यह ज्ञान है। भक्ति में कहावत है, अज्ञान अंधकार है परंतु ज्ञान महाअंधकार है। क्यों? क्यों? अज्ञान अंधकार है परंतु ज्ञान महाअंधकार है, क्योंकि ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। मैं जानता हूं, यह भ्रम उत्पन्न करता है, मुझे ज्यादा आता है। हम जानते हैं परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, तुम नहीं जानते। पहले सुनो मैं जो बोल रहा हूं। कोर्स कराने के साथ साथ अहंकार की भी तृप्ति। परमात्मा परिचय देने से भी ज्यादा इस बात की खुशी कि हम जीते वो हारा, उसके मत का हमने खंडन कर दिया। वो बाप का बन जाए इसकी खुशी कम, हम जीत गए इसकी खुशी ज्यादा, हमारा अहंकार जीत गया इसकी खुशी ज्यादा। क्या ये ज्ञान है? जो ज्ञान अहंकार को उत्पन्न करे अंधकार से भी बदतर है, क्योंकि अहंकार अंधकार है। अहंकार अंधकार है। प्राइड हैथ अ फॉल। ज्ञान अर्थात यह जान लेना कुछ भी जाना नहीं है। ज्ञान अर्थात यह समझ अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, आकाश के उस पार भी आकाश है। The sky beyond the sky। जो मैंने समझा है वो कुछ भी नहीं है। मैंने अब तक तुमको जो पढ़ाया है, सिखाया है, वो केवल एक बूंद है। साकार महावाक्य है बाबा के। और हम सोच रहे हैं हमने सब कुछ जान लिया, और हम सोच रहे हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। ज्ञान का यह अंधकार, अहंकार का यह अंधकार चेतना को वही रोक देता है और आगे बढ़ने नहीं देता। ज्ञान अर्थात वह विनम्रता, ज्ञान अर्थात वह भाव कि अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, सितारों से आगे जहां और भी है। वह ज्ञान। इसके लिए ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की प्यास निरंतर रहे। जो जाना है उस पे अहंकार नहीं, जो पड़ा है उसका गर्व नहीं, परंतु जानना है, जानना बाकी है, और आगे और आगे और आगे और आगे। जब ऐसी विनम्रता, ऐसी ह्यूमिलिटी, ऐसी नम्रता हृदय में हो, तब याद निरंतर हो सकेगी। जहां अहंकार कुंडली मार कर बैठा हुआ है, वहां परमात्मा याद उड़ जाती है। तो निरंतर याद का पहला आधार है ज्ञान, दूसरों से सुनना, दूसरों से समझना, बाबा से सुनना, वाक्यों पर चिंतन करना, महावाक्यों पर, और हरेक से सीखना। भक्ति में दत्तात्रेय है, 24 गुरु किए, हरेक को गुरु बना दिया, हरेक से सीखा। ऐसा कोई नहीं है जो हमारे संपर्क में आए और हमें सिखाए ना, छोटे से लेकर बड़ों तक सबसे सीखना है। सबकी बुद्धि अपनी अपनी है, सबके अनुभव अपने अपने, सबके जीवन अपने अपने, सबके संस्कार अलग अलग है, सबकी संस्कृति, भाषा, बुद्धि, भाग्य। दूसरा आधार प्रभु प्रेम, परमात्मा प्रेम। जहां पर हृदय में प्रभु प्रेम नहीं, परमात्मा प्रेम नहीं, वहां याद भी झूठी है। सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। पहले वह ईश्वर का प्रेम पाओ, फिर संसार की सारी चीजें स्वतः ही ऐड हो जाएगी। हमारा प्यार कैसा है, कितना गहरा है, हिलने वाला तो नहीं, ऊपर ऊपर तो नहीं। बाबा की महावाक्य ये दिल का सौदा है, मुख का सौदा नहीं। केवल मुख से बाबा 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 कहना क्या ईश्वरीय प्रेम है? हां, वो एक अभिव्यक्ति है, परंतु केवल मुख से कहने वाले ये दिल का सौदा है, मुख का नहीं, इतना सस्ता नहीं है। Not everyone who cometh and saith, Lord, Lord, but he that doeth the will of my Father shall enter the kingdom of heaven. हर एक वो नहीं जो आकर कहता है हे प्रभु, पर जो मेरे पिता की मत पर चलेगा वही केवल स्वर्ग में जाने का अधिकारी होगा। परमात्मा प्रेम की पुनः हृदय में स्थापना करनी है। मनुष्य के प्रेम को हटाते जाओ। बहुत प्यार कर लिया मनुष्य से, बहुत महत्व दे दिया मनुष्यों को। ही हु गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। वह व्यक्ति जो ईश्वर को अपने जीवन में द्वितीय स्थान पर रखता है, वो उसे किसी भी स्थान पर नहीं रखता। किस स्थान पर रखेंगे उसको? नंबर वन, हमारी एक बहन जी कहते थे, अपने दिल में एक चेयर रखना है, सोफा नहीं। सोफा रखोगे तो तीन चार लोग बैठ जाएंगे, एक ही चेयर रखो जिसमें बाबा बैठे। कुमारों से भी आज का कुमार नशे से कहेंगे, मेरा एक बाबा और मेरी एक सेवा, बस। कहा आज कितना रोते हैं संसार के लोग पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए। भगवान के लिए कोई रोता है? कितने बकेट भर भर के आंसू बहाते हैं। भक्ति में कहावत है, जब तीन प्यार एक हो जाए और भगवान की ओर चले जाए तो भगवान अवतरित होगा। एक माँ का अपने बच्चे से जितना प्यार है उतना एक कामी पुरुष का स्त्री की देह से जितना प्यार है उतना एक लोभी पुरुष का धन से जितना प्यार है, ये तीनों प्यार एक हो जाए और सीधा भगवान की ओर डायरेक्ट हो जाए तो भगवान स्वयं अवतरित होगा। क्या हमारा इतना प्यार है उससे? स्वयं को देखना है, कहां खंड खंड होकर पड़ा हुआ है, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां। डबल विदेशियों से मुलाकात अव्यक्त बाप दादा के वाक्य है। विदेशियों को बाबा कह रहे, पहले तुम्हारे दिल के टुकड़े हजार थे, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर, बाप ने आके सारे टुकड़े एक किए हैं। ऐसा प्रेम प्रभु के प्रति, तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका वो तख्त फीका। कल गीत गाए थे ना सबने, सब फीका है, गौन है उस प्रेम के आगे संसार का प्रेम। तीसरा आधार पवित्रता, बिना पवित्रता के याद ठहर नहीं सकती। कोई कहे हम विकर्म करें और बाबा को याद भी करेंगे, अमृत वेला भी करेंगे, मुरली क्लास भी जाएंगे और भोग और वासनाओं में भी डूबे रहेंगे, क्या यह हो सकता है? ये याद शुद्ध पवित्र बुद्धि में टिक सकती है? ये याद, ये ज्ञान, इस ज्ञान की पॉइंट्स, इस ज्ञान का चिंतन केवल पवित्र आत्मा में ही हो सकता है। ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द लॉर्ड। धन्य है वो, धन्य भागी है वो जिनका हृदय शुद्ध है, वो भगवान को देखेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल है, राम जी कहते हैं विभीषण शरण में आता है, सब लोग कहते हैं विभीषण को मत लो, शायद रावण की चाल हो सकती है क्योंकि है तो फिर भी राक्षस। राम कहते हैं नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल मन से आया है वो मुझे प्राप्त करेगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट मुझे प्रेम नहीं है, कपट से छल से मुझे प्रेम नहीं है। छिद्रान्वेषण करने वाले जो है फॉल्ट फाइंडर्स, दूसरों का दोष देखने वाले मोहि न भावा। निर्मल मन, जिसका हृदय निर्मल है, शुद्ध है, पुनीत है, ऐसे सब मुझे प्राप्त करते हैं। और जिसका ऐसा मन निर्मल है वो मेरे पीछे नहीं जाता है, मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। हरि पीछे पड़ा हुआ है, हे कबीर हे कबीर, कबीर आगे जा रहा है। क्यों? निर्मल कर दिया मन को जैसे गंगा नीर। अव्यक्त बाप दादा की दादी जानकी से मुलाकात। जनक विश्व की परिक्रमा करती है, बच्ची विश्व की परिक्रमा करती है और बाप बच्ची की परिक्रमा करते हैं। जितनी हृदय में अशुद्धियां हैं इम्प्यूरिटीज है, घृणा है, द्वेष है, नफरत है, भगवान वहां नहीं आता। वहां से वो भाग जाता है, नटखट तेरा लाल यशोदा, नटखट तेरा लाल। वो टिकता नहीं है, रहता नहीं है वहां पर, उन गोपियों के घर में जाता है जहां पर वो माखन क्या है, माखन अर्थात शुद्ध हृदय, उन्हीं के घर का माखन चुराता है जिनका हृदय शुद्ध है, नहीं तो भाग जाता है। अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को रिवाइज करो, बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो। 63 जन्म देख लिया विकार में जाने से क्या होता है, 63 जन्म काम का सुख तुमने देखा, वासनाओं में गोते लगाए, क्या पाया? क्षणिक सुख जो कि फ्रस्ट्रेशन में तुरंत रूपांतरित हो जाता है। चौथा आधार वैराग, जो आत्मा संसार से चिपकी हुई है, जो आत्मा संसार में आसक्त है, जिस आत्मा के हृदय में संसार घूम रहा है, जो केवल संसार के बारे में सोच रही है, वहां पर निष्दिन याद, निष्फल याद कैसे रह सकती है? स्पिरिचुअल माइंड, रिलीजियस माइंड इज ए नॉन एम्बिशियस माइंड। संसार की तृष्णा है, संसार की इच्छा है, संसार की वासना है, संसार के भोग, संसार के की विलासिता, मान सम्मान और कामना जहां है वो बुद्धि ईश्वर की ओर नहीं आ सकती। जिनका रस संसार है वो भगवान में कैसे रस लेगी? जिनको संसार अच्छा लगता है वो भगवान की ओर कैसे आएगी? दो ही मिल सकते हैं, या तो काम या फिर राम। क्या चाहिए, राम चाहिए या काम चाहिए? किसी ने अभी अभी एक चित्र भेजा था जिसमें एक छोटी सी बच्ची खड़ी है जिसके हाथ में एक गुड़िया है छोटी सी, वो कहती है मेरी है, मैंने दूंगी, और भगवान उसके सामने खड़ा है हाथ में एक बहुत बड़ी गुड़िया लेकर, उसको कह रहा है तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी इसके बदले चीज दूंगी। वो कहती है मैं नहीं दूंगी, वो दो तो ये मिलेगा, पर जो मिलने वाला है उसने छुपा के रखा है पीछे, पीछे एक बहुत बड़ा टेडी बेयर, बच्ची के हाथ में छोटा सा टेडी बेयर। वो कहती है नहीं दूंगी, वो कहता है दो, वो दे दो और ये दे दो। तुमने संसार को पकड़ के रखा है। वो कहता है हथेली पर बहिष्त लाया हूं, वो छोड़ो तो ये मिलेगा। हम कहे नहीं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं दिया तो ये भी गया वो भी गया। पिबत राम रस, राम रस को यदि पीना है तो विष को छोड़ना पड़ेगा। काम विषय, जो कुछ यहां दिखाई दे रहा है इन सब के प्रति वैराग, महात्मा बुद्ध घर छोड़कर निकल गए, उनका सारथी चलना साथ में था। रथ से उतरे, चन्ना ने फिर भी एक बार कहा, स्वामी एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। वो देखो पीछे क्या दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा राजभवन, इतना बड़ा राजप्रसाद, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे पिता, तुम्हारी मां, इतनी सारी प्रजा, इतना बड़ा भारत का साम्राज्य तुम्हारे चरणों में होगा। एक बार जाने से पहले पीछे तो मुड़ के देखो, देखो तो। सिद्धार्थ गौतम पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, मुझे केवल आग की लपटें दिखाई दे रही है। ये जो बना के रखा है इतना बड़ा, सब नष्ट होगा। ये जिसे मैं अपना कह रहा हूं, ये जिसको मैं मेरे कह रहा हूं, सब पराए है। इस समस्त संसार में सगा कोई भी नहीं, लिख के रखो इसको। जिस जिसको तुम कहोगे ये मेरा है, उसी से सबसे पहले धोखा होगा। सब पराए है। दो मार्ग है, एक तो कोई अपना नहीं है और दूसरा भी एक पॉजिटिव मार्ग है, सब अपने हैं। जिस मार्ग से जाना है उस मार्ग से जो मंजिल एक ही है, एक वैराग्य का मार्ग है, परंतु पहला मार्ग के बाद ही दूसरा मार्ग आ सकता है। विश्व कल्याण का मार्ग विश्व के घृणा से चालू होता है। जो संसार में आ सकता है, व्यक्तियों में आ सकता है, वैभव में आ सकता है, वो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकता है। पहले तो वैराग, नहीं चाहिए यहां का कुछ। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, विथ इट्स शिकेनरी, विथ इट्स ब्लैक गार्डिज्म, विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग। घृणा है मुझे इस संसार से, इस स्वप्न से, इस दुस्वप्न से, विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स। यहां पर चेहरे बहुत सुंदर है, दिल खोटे है। सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, बाजार लगा हुआ है यहां पर, केवल लेन देन है, सच्चा प्यार यहां नहीं। आई हेट मैरिजेस, यहां से विश्व कल्याण का मार्ग चालू होता है। एक एक को बैठ के प्रेम करने से नहीं फंसोगे उसमें, और मोह विकार है, प्रेम नहीं, प्रेम दिव्य गुण है। अपने मोह को प्रेम की संज्ञा देकर खुद का छलावा करना सेल्फ डिसेप्शन, आत्मवंचना, आत्म प्रवंचना, हिपोक्रेसी है, दंभ है, आडंबर है, झूठ है। पांचवा आधार एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। जिसकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती, वहां पर निशिदिन, निष्पल, प्रतिपल, हर पल याद भी नहीं रह सकती। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास करना है। अभी अभी अपने मन को एकाग्र कर देना, अभी अभी वहां से हटा के वहां, वहां से हटा के वहां। प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो कार्य कर रहे हैं उसमें संपूर्ण एकाग्र हो जाना, वो कोई भी कार्य हो। जब बाकी सभी कार्य एकाग्रता से होंगे, उस समय याद भी एकाग्रता से होंगे। उसको एकाग्रता नहीं कहते, उसको याद नहीं कहते जिसमें गलतियां हो रही है। ब्रह्मा बाबा के पास बहनें आती थी, बहनें आबू रोड में उतरने की जगह आगे स्वरूपगंज में उतर गई ट्रेन से। आगे सिरोही है, स्वरूपगंज, और फिर कहते हैं, बाबा हम आपकी याद में भूल ही गए आबू रोड कब आया। क्या ये याद है? हमको पता ही नहीं आबू रोड आ गया, हम आगे स्वरूपगंज में जाके वहां पे पता चला, रे स्वरूपगंज आ गया, सिरोही आ गया, पिंडवाड़ा आ गया। अर्थात याद नहीं थी, एकाग्रता नहीं थी। एकाग्रता को बढ़ाना है, जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, जब तक चाहो बुद्धि को एकाग्र कर सके। मुरली मिली है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, पांच बार पढ़ लिया, फिर कोई पूछे क्या कहा बाबा ने, अब पता ही नहीं, याद नहीं है। पांच बार पढ़ने के बाद में भी हाथ में खाली है, एक तो पॉइंट बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ भी नहीं। शायद बुद्धि भटक रही थी, पढ़ तो रहे थे परंतु बुद्धि यहां वहां थी। एकाग्रता वो लेजर, वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हो जाए बुद्धि, सारी किरणें उस पर और नीचे पत्थर। वैसे किरणें कितने भी पड़े सूरज के सामने, पत्थर रख दो, कागज जलेगा क्या? एकाग्रता चाहिए, शार्पन द एक्स। अब्राहम लिंकन ने कहा है, यदि मुझे 6 घंटे दिए जाए एक झाड़ को काटने के लिए और एक कुल्हाड़ी दी जाए, तो पहले 4 घंटे तक मैं कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा, कुल्हाड़ी लेकर झाड़ काटना नहीं चालू करूंगा, पहले 4 घंटे क्या करूंगा, कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा और फिर एक ही वार से झाड़ को काट दूंगा। कुल्हाड़ी की धार को तेज करना है एकाग्रता की शक्ति को। बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ो मुरली का, इतना ही वाक्य, इतना ही वरदान पढ़ लिया बस, परंतु संपूर्ण एकाग्रता से ऐसा उसको पढ़ो कि शब्द शब्द, वाक्य वाक्य यहां अंकित हो जाए। बाप तुम्हें ऐसा पढ़ाते हैं, लास्ट सीजन के लास्ट सीजन की मुरली, बाप तुम्हें ऐसा पढ़ाते हैं कि छपाई हो जाती है। याद आई मुरली, अभी भी 2 साल पहले, छपाई हो जाती है, टीचर ऐसा पढ़ाता है, ऐसा जबरदस्त टीचर है, और बच्चे क्या कहते हैं, वी डोंट थिंक सो। क्या कहते हैं बाबा को, बाबा आप कहते हो, आप जो पढ़ाते हो हम में छपाई हो जाती है, पर हम में तो होती नहीं। एकाग्रता छठवां आधार, अटेंशन। याद रहेगी तब जब अटेंशन होगा, याद रहेगी जब स्वयं को याद दिलाओगे कि करना है, नहीं तो बार बार भूल जाता है। बार बार उसको जगाओ, बार बार उसको उठाओ, मन की आदत है सो जाने की। मन से बात करो, अपने आप से बात करो, जगाओ, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूर्ख मन क्या कर रहा है। कल भी बताया था, हमारे पास एक भाई है, उन्होंने अपने कमरे में लिख के रखा है, हे मूर्ख दिनकर जाग, अपना ही नाम लिख के रखा है आईने के ऊपर। हे मूर्ख दिनकर, क्या करने आया था और क्या कर रहा है। भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूर्ख मन क्या कर रहा है तू, राम का चिंतन करने के अतिरिक्त तुम्हें और कुछ करना चाहिए, तुम काम का चिंतन करते हो। अस्य ब्रह्माणि रमते नित्यम, नंदति नंदति नंदत्तेव, भजत गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अटेंशन, बार बार अटेंशन। बुद्धि भटकने लगे, खींच के लाओ उसे और फिर लगाओ, और भटकने लगे और खींच के लाओ, समझाओ उससे, बात करो। छोटा सा बच्चा है मन, उसको समझाओ कहां जा रहा है, क्या मिलेगा तुमसे इन चीजों से, क्या पेट नहीं भरा द्वापर से, अब तक किसका पेट भरा है, भोग ने हमको नहीं, हमने भोग को नहीं भोगा है, भोग ने हमको भोगा है। सतत अवधान, कॉन्स्टेंट अटेंशन। लास्ट प्रैक्टिस, ऐसे ही याद निरंतर नहीं हो जाएगी, प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक बॉक्सर से पूछा गया, तुम क्या कर रहे थे? वो कहता है, प्रैक्टिसिंग। तब क्या कर रहे थे? जब तुम्हारा अपोनेंट, तुम्हारा प्रतिद्वंदी प्रैक्टिस कर रहा था। वो कहता है, प्रैक्टिसिंग। तब क्या कर रहे थे? जब मैच होने वाली थी, मैच के पहले क्या कर रहे थे? वो कहता है, प्रैक्टिसिंग। मैच खेल ली, मैच में तुम जीत गए, उसके उस समय तुम क्या कर रहे थे? वो कहता है, प्रैक्टिसिंग। तुम्हारा जब दुश्मन सो रहा था तब क्या कर रहे थे? प्रैक्टिसिंग। जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? वो कहता है, प्रैक्टिसिंग। खेल से पहले भी प्रैक्टिसिंग, खेल खेला, खेलने के बाद जीत गया, जीतने के बाद शांत होकर बैठा नहीं, फिर भी प्रैक्टिसिंग। करत करत अभ्यास, कितना ही जड़मती क्यों ना हो, सुजान होगा। सिल कितनी भी कठोर क्यों ना हो, सिल पर पड़त निशान, निशान पड़ेगा। आदत पड़ेगी इसको प्रैक्टिस से, बार बार बिठाओ उसको योग में, बार बार उसको प्रोग्राम दो, बार बार उससे बात करो कि तुम्हें ये करना है। बहुत शरारती बच्चा है, इतने आसानी से वश में नहीं आने वाला है, भागता है उठ उठ के। निरंतर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो याद के लिए ये सात आधार स्तंभ है। पहला, ज्ञान का मनन चिंतन अध्ययन समझ। दूसरा, प्रभु प्रेम, हल्का हल्का प्रेम नहीं, झूठा वाला प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम, जिगरी प्रेम, हड्डी प्रेम, गोपियों सा प्रेम। उस कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई दिखाई नहीं देता है। कृष्ण गाती गीती कृष्ण ध्याती चित्ती हे जी कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते हुए, कृष्ण का गुणगान करते हुए वो गोपिया ही कृष्ण बन गई। जब उद्धव आया सिखाने के लिए, समझाने के लिए, अरे तुम गोपिया क्या कर रही हो, वो कृष्ण तो परमात्मा है, कृष्ण अवतार है, उसको तुम पुरुष समझ रही हो, साधारण व्यक्ति नहीं है, वो ब्रह्म है। गोपिया उसको कहती है, हमें तो वो सब कुछ पता नहीं, तुम्हारे ज्ञान की बात है, हम केवल इतना जानते हैं वो हमारा गोविंद, हमारा श्याम है, वो हमारे साथ यहां पर खेला था, वो हमारे पास वहां खेला था, वो हमारे पास यहां उसने बांसुरी बजाई थी, वो उसको 6 महीने वहां रुकता है गोपियों को ज्ञान देने के लिए। कृष्ण भेजते उसके, जाओ जाकर गोपियों को समझाओ क्या कर रही है, देख के आओ। जब यमुना से पार आता है उद्धव, उसको गर्मी होने लगती है, क्योंकि उसके पास तो ज्ञान की उष्मा थी, परंतु गोकुल में तो प्रेम की अग्नि। जल रही थी। 6 मास रुकता है, आखिर में साष्टांग दंडवत करके वापस जाता है, हार हो जाती है। प्रेम की विजय होती है ज्ञान पर, तर्क पर, दिमाग पर दिल की विजय है, क्योंकि वो तो डूबी हुई है उसमें। पराभक्ति कहा जाता है उसे। अगला, संपूर्ण प्यूरिटी। अगला, वैराग। अगला, संपूर्ण एकाग्रता। अगला, अटेंशन। कितने हुए? 6। एक बाकी है, प्रैक्टिस। तो निरंतर याद के ये 4-7 स्तंभ, इनको याद रखना, इस पर और चिंतन करना। ओम शांति। एक छोटा सा योग का प्रयोग करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। रग रग में जिसके परमात्मा याद समाई हो, मैं बा प्रभु प्रेम में मगन आत्मा हूं। निरंतर याद, सतत याद, देखना है स्वयं को एक विशाल स्क्रीन सामने है, उसमें स्वयं को देखो, जहां पर मैं रहता हूं वो मेरा कमरा, वो बिस्तर, अमृत वेले का समय, आंख खुली, जिस तरह मैं उठ रहा हूं, देखो स्वयं को, मैं बैठा हूं बाबा की याद में और ऊपर से स्वयं को देख रहा हूं, कैसी मेरी याद है, कहीं बुद्धि भटक तो नहीं रही, देखना है स्वयं को सेवा केंद्र में बैठा हुआ मैं किस तरह से मुरली सुन रहा हूं, कितनी एकाग्रता है, कितना ध्यान से सुन रहा हूं, अपने सेवा केंद्र का दृश्य सामने लाना है। रोज मैं कहां बैठता हूं, कैसे मुरली सुनता हूं या सुनाता हूं, अब देखना है स्वयं को भोजन करते हुए, किसकी याद में भोजन कर रहा हूं, कैसे भोजन कर रहा हूं, समर्पण भाव कितना और आसक्ति कितनी, सेवा क्षेत्र पर संबंध संपर्क में कितनी वैराग्य युक्त स्थिति है, कितना हृदय परमात्मा प्रेम से भरा है, सारे दिनचर्या को देखना, शाम को देखो, शाम का वो समय, नुआ शाम का योग मधुबन में चल रहा है, सेवा केंद्र पर योग चल रहा है। क्या मैं सेवा केंद्र पर हूं या कहीं बाहर व्यर्थ में? रात्रि का समय है, ध्यान चर्चा में गुजर रहा है, मुरली पढ़ रहा हूं कि संसार की खबरें, संसार के समाचार, संसार के मनोरंजन में डूबा हूं। रात्रि का समय, कितना योग युक्त होकर सो रहा हूं, क्या सारे दिन भर प्रभु प्रेम रहा। कितना ज्ञान का मनन किया, कितना वैराग्य से भरा। कितना टेंशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितनी याद की प्रैक्टिस रही। कहीं पवित्रता भंग तो नहीं हुई? अपने जीवन को और दिनचर्या को मैं फरिश्ता देख रहा हूं। अब इस दिनचर्या को मुझे पुनः ज्ञान से भरना है, पवित्रता से भरना है, प्रभु प्रेम से भरना है, वैराग से भरना है, एकाग्रता से भरना है, ध्यान से और अभ्यास से भरना है। याद के सातों स्तंभ, ओम शांति।